समवेत भक्त वृंद की जाय, समवेत भक्त वृंद की जाय, समवेत भक्त वृंद की जाय, श्री श्री गुरु गौरांग की जाय। ओम ज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज बलराम जयंती है, श्री बलराम का आविर्भाव दिवस। बलराम भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, दोनों ही भगवान हैं। दोनों ही भगवान होते हुए भी ये दो अलग भगवान नहीं है। जैसे कल गौरनारायण महाराज भी चर्चा कर रहे थे बलदेव तत्व के बारे में, वो चैतन्य चरितामृत से सुना रहे थे कि कृष्ण और बलराम इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल काया या रूप में अंतर है। सर्व अवतारे कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय रूप श्री बलराम। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, अवतारी है, सर्व अवतारी। अवतार और अवतारी में अंतर क्या है कि अवतारी सारे अवतारों के उद्गम हैं, उन्हीं से अन्य अवतार उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण वही अवतारी स्वयं भगवान है, और उन्हीं का द्वितीय रूप श्री बलराम है। वैसे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। श्री कृष्ण सब कुछ है और उनसे अलग जो भी कुछ है, जो बच जाता है शेष, वो बलराम। इसको समझने की आवश्यकता है। कल भी प्रवचन में गोपी परायण धन प्रभु अंग्रेजी क्लास में बता रहे थे कि बलराम का नाम शेष क्यों है, क्योंकि श्री कृष्ण सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, और बलराम फिर सब कुछ के रूप में विस्तार हो जाते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ जो भी है, वो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे वो भौतिक जगत हो, यहां हम जो भी देखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, भगवान के धाम में भी जो भी कुछ है, जो वैकुंठ लोक हैं, जो गोलोक वृंदावन है, और भगवान की जितनी भी सामग्री है, सब कुछ बलराम से आता है। इसलिए उनका नाम है शेष। हालांकि भगवान तो अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए भगवान से बाहर, भगवान से भिन्न, भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, इसीलिए वो अपने आप को द्वितीय रूप में प्रकट करते हैं, जो कि बलराम है। तो बलराम शेष है और अनंत भी है, क्योंकि वो अनेक तरीकों से, अनंत रूपों से वो भगवान की सेवा करते हैं। तो ये है बलराम, भगवान के द्वितीय रूप। वैसे अंतर प्रभुपाद जी कहा करते थे दोनों में, अर्थात कृष्ण और बलराम में एक ही है, और वो है कि कृष्ण सांवले हैं और बलराम गोरे हैं, सफेद हैं, बस इतना ही अंतर है। तो बलराम जी सफेद क्यों हैं, इसके बारे में कई धारणाएं हैं, अलग अलग मत हैं। एक मत ऐसा है कि एक बार जब देवताओं ने निवेदन किया भगवान से कि आप यहां पर धरातल पर प्रकट होइए और असुरों का नाश कीजिए, तो महाविष्णु ने स्वीकार किया और कहा कि मैं शीघ्र ही प्रकट हो जाऊंगा, और उन्होंने अपना एक काले रंग का बाल लिया और उसको देवकी माता के गर्भ में प्रकट कराया, और फिर उन्होंने अपना एक सफेद रंग का बाल लिया और रोहिणी माता के गर्भ में प्रकट कराया, तो उस काले बाल से श्री कृष्ण प्रकट हुए और उस सफेद बाल से बलदेव प्रकट हुए। ऐसे भी एक मत है, परंतु श्रील रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि कहते हैं कि यह सत्य नहीं है। ये तो केवल ये कथा जो है केवल असुरों को भ्रमित करने के लिए है। सत्य तो ये है कि स्वयं अवतारी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वृंदावन में, और स्वयं उनके द्वितीय रूप वो यहां पर प्रकट हुए कृष्ण भगवान के साथ में। वैसे क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है, आत्मा भी भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है, बलराम भी हैं, तो क्या दोनों में अंतर है या नहीं? अंतर तो बहुत है। बताया जाता है कि भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं। एक है स्वांश कला और दूसरे हैं विभिन्नांश। जो जीवात्माएं हैं वो भगवान के विभिन्नांश हैं, जो उनके कणमात्र अणुमात्र अंश हैं, जो विभिन्न, जो भिन्न हो गए हैं भगवान से। और दूसरे हैं स्वांश कला, मतलब जो विष्णु तत्व के स्तर में आते हैं, वो भी भगवान ही हैं। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, जीव अंश रूप ही रहता है। परंतु ये स्वंश कला के स्तर में जो है वो सब भगवान के बराबर है, विष्णु तत्व कहलाते हैं। तो स्वांश कला में भी दो भाग हैं, एक है स्वांश और दूसरे है कला। तो स्वांश मतलब स्व अंश, भगवान के निजी देह से विस्तार, और वो है बलराम। तो स्वांश के वर्ग में केवल बलराम जी हैं, और फिर बलराम जी से जितने भी अन्य रूप हैं, विष्णु तत्व हैं, वो बलराम जी से आते हैं और उनको कला कहते हैं। संकर्षण से आरंभ होकर जितने भी और अवतार हैं उन सबको कला कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी स्वांश है, स्व अंश पूरी तरह से भगवान है। उनमें और भगवान श्री कृष्ण में शक्ति का कोई अंतर नहीं है, केवल लीला के लिए वो अलग हो जाते हैं। तो क्या आवश्यकता है भगवान को अपना एक द्वितीय रूप बनाने के लिए, क्या कारण है इसके लिए? और कारण एक है और वो है सेवा। बलराम, जैसे कि कल भी प्रवचन में बताया गया था, भगवान श्री कृष्ण की सेवा अनेक तरीकों से करते हैं, और केवल इस सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बलराम के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए बलराम को सेवक भगवान कहते हैं। भगवान है लेकिन सेवा करने के लिए ये भिन्न रूप एक धारण हुआ है, इसलिए उनको सेवक भगवान कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सेव्य भगवान है, जिनकी सेवा की जाती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जे जाय चे ना जाय ते तय चे कौरे भृत्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि अंततः सेव्य व्यक्ति या सेव्य पुरुष केवल श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर गोविंद वृंदावन के श्री कृष्ण, और बलराम भी उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो अन्यों की बात तो क्या है, जितने भी और अवतार हैं, कला अंश हैं भगवान के, और जितने भी जीव हैं, शक्ति तत्व है, जीव तत्व है, शिव तत्व है, विष्णु तत्व है, और जितने भी तत्व हैं, वो केवल इस सेव्य भगवान की की सेवा करने के लिए है बस। तो सेवक भगवान और सेव्य भगवान, इस प्रकार से भगवान के अलग अलग तत्वों को समझना ये एक बहुत सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म तत्व है ये। तो भगवान शब्द ये बहुत गहरा है। अन्य जगह में हम देखते हैं कि लोगों को संपूर्ण धारणा नहीं है भगवान के बारे में, भगवान कौन है, भगवान क्या है। वैष्णवों के अंदर भी हमें जानना चाहिए कि जब हम भगवान कहते हैं तो क्या केवल श्री कृष्ण है। प्रभुपाद समझाते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण शब्द मतलब श्री कृष्ण के साथ सब कुछ, श्री कृष्ण के साथ उनके अवतार, श्री कृष्ण के साथ उनके भक्त, श्री कृष्ण के साथ उनकी शक्तियां, ये सब मिलाकर ये श्री कृष्ण है, ये परम सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में अच्छी तरह से समझाते हैं कि भगवान गॉड और परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ में यही अंतर है, कि एब्सोल्यूट ट्रूथ या परम सत्य वो है जिनमें सब कुछ है। लेकिन अलग अलग जगह लोग कोई कहते हैं भगवान ये है, भगवान वो है, लेकिन भगवान तो सब कुछ होते हुए भी अपना व्यक्तित्व खोते नहीं है, ये है भगवान श्री कृष्ण। तो आज उनके द्वितीय रूप बलराम जी का प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है, और इसलिए आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध से थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले संक्षेप में इसका इतिहास हम बताना चाहेंगे, जो कि आप सब बचपन से सुनते आए हैं। हुआ यह कि जब माता पृथ्वी के ऊपर बोझ पापी लोगों का बहुत बढ़ गया, तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं भी इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता, तो हम सबको मिलकर क्षीर सागर में जाना चाहिए। वहां सागर के तट में स्थित होकर क्षीरोदक्षाय विष्णु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। तो वैसे ही ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने किया। जब प्रार्थना की पुरुष सूक्त प्रार्थना आदि से, तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन दर्शन नहीं दिया। ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर से उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया और कहा कि चिंता नहीं करो, पृथ्वी माता से ये कह दो कि मैं शीघ्र ही प्रकट हो जाऊंगा और मेरे पहले मेरा अनंत रूप शेष रूप प्रकट हो जाएगा और साथ साथ मेरी योग माया शक्ति भी प्रकट होगी। तो हे देवतागण, मेरी ये इच्छा है कि मेरी लीलाओं की तैयारी के लिए, मेरी लीलाओं में शामिल होने के लिए आप सबको भी यदुकुल के अलग अलग परिवारों में जन्म लेना है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। सारे देवताओं को और विशेष करके पृथ्वी माता को उन्होंने ये बताया। पृथ्वी माता भी बड़ी प्रसन्न हो गई और वापस चली आई। उधर जब यहां सब कुछ, सारे यदुकुल के सारे देवतागण वगैरह सब तैयारी कर रहे थे पृथ्वी लोक पर प्रकट होने के लिए, उधर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया। इसके पहले, इस दौरान ही मथुरा वृंदावन में बहुत कुछ हो रहा था। देवकी का विवाह वसुदेव से हो गया था और जब वसुदेव देवकी रथ में बैठे थे और देवकी के भाई कंस रथ को चलाकर ले जा रहे थे, तो अचानक एक आकाशवाणी हुई और ये घोषणा हुई कि हे मूर्ख कंस, तुम इतने प्रेम से तुम्हारी बहन को उसके पति के घर ले जा रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बहन का आठवां पुत्र जो है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो असुरी लोगों का स्वभाव ऐसे होता है कि वो बड़े स्वार्थी होते हैं। जितने भी उनके संबंध होते हैं इस दुनिया में, वो स्वार्थ के ऊपर आधारित होते हैं। जब तक उनको किसी संबंध से कुछ प्राप्त हो सकता है, कोई इंद्र तृप्ति मिल सकती है, तो वो अपने संबंध को बनाए रखते हैं। और जब वो देखते हैं कि ये संबंध मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए हानिकारक है, तो उस संबंध को त्यागने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो कंस तो असुरों के शिरोमणि थे, तो जब कंस ने देखा कि अरे मेरी बहन जो है उसका आठवां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तो तुरंत देवकी की हत्या करने के लिए कंस तैयार हो गया। तो वसुदेव ने किसी न किसी तरह से कंस को शांत कराया और जब वसुदेव ने देखा कि कंस को अपने इस क्रूर कार्य से रोकने के लिए एक ही कार्य है, एक ही उपाय है, तो वसुदेव ने उस उपाय को चुन लिया। और वह उपाय था कि वसुदेव ने कंस से कहा कि जैसे ही मेरे पुत्र जन्म लेंगे, मैं उन पुत्रों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हालांकि कंस असुर था, लेकिन वसुदेव देवता थे और वसुदेव का स्वभाव कंस अच्छी तरह से जानता था, इसलिए कंस ने जान लिया कि वसुदेव जब कुछ कहता है तो वचनबद्ध होगा, सत्यवान है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, अपने वायदे को कभी तोड़ेगा नहीं। तो कंस ने उनको छोड़ दिया, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, जब वसुदेव अपने पहले पुत्र को लेकर आए कंस के पास, कंस का हृदय भी पिघल गया और कंस कहने लगे कि नहीं नहीं, वापस ले जाओ, तुम इतने सत्यवान हो, वास्तव में तुम्हारा आठवां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो पहले पुत्र की हत्या में भला क्यों करो। तो हालांकि कंस का हृदय तो उस समय पिघल गया, लेकिन नारद मुनि बड़े चिंतित हो रहे थे। तो नारद मुनि वहां पर आए। नारद मुनि ने देखा कि अरे ये सब गड़बड़ हो जाएगा, अब कंस दयालु बन गया तो सब हो जाएगा गड़बड़, सारा जो कार्यक्रम है वो पलट जाएगा, फिर श्री कृष्ण ही आएंगे, सोचेंगे कि सारे असुर के देवता बन गए फिर मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नारद मुनि वहां पर आए, नारद मुनि ने उपदेश दिया कंस को, कंस को भड़काया कि अरे कंस तुम नहीं जानते कि आठवां पुत्र इस तरफ से है या उस तरफ से है, पहले नंबर से आठवां पुत्र या आठवें पुत्र से पीछे गिन के आठवां पुत्र। तो इस प्रकार से भ्रमित कर दिया कंस को नारद मुनि ने। इसमें नारद मुनि का कोई दोष नहीं था, क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि कंस का पाप जो है वो बढ़ते रहे, पाप की पूंजी इतनी बढ़ जाए कि वो स्वयं अपने मृत्यु को निमंत्रण दे, और जब ये पाप की पूंजी बढ़ जाएगी तो स्वयं श्री कृष्ण आ जाएंगे और कंस की हत्या करेंगे। तो इस प्रकार से कंस ने फिर उस बच्चे की हत्या कर दी, और नंद और वसुदेव और देवकी दोनों को जेल में डाल दिया, और एक के बाद एक जो छह पुत्र थे देवकी के उनकी हत्या कर दी। और जब सातवें पुत्र के जन्म होने का समय आया तो फिर क्या हुआ, आइए शुकदेव गोस्वामी की वाणी सुनते हैं। सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। सप्तमो वैष्णवम धाम, यहां धाम शब्द का प्रयोग है अवतार के रूप में, अंश के रूप में। वैष्णवम मतलब विष्णु के अंश, तो विष्णु के अंश अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं बलराम के रूप में, शेष के रूप में। सप्तमो तो सातवां, यत अनंतम प्रचक्षते कि वो अनंत या शेष के रूप में विख्यात होंगे। गर्भो बभूव देव क्या, तो देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, तो वह सातवें गर्भ थे देवकी के। हर्ष शोक विवर्धनः, तो उस समय जब देवकी ने देखा कि मैं सातवीं बार गर्भवती हो गई हूं, तो उनके मन में हर्ष और शोक दोनों हुए। हर्ष इसलिए हुआ कि मेरा सातवां बेटा अब जन्म लेगा, और शोक इसलिए हुआ कि देवकी माता ने सोचा कि अरे पहले जैसे मेरे छह पुत्रों की हत्या हुई, कंस इस सातवें पुत्र की भी हत्या करेगा। तो इसलिए यहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं हर्ष शोक विवर्धनः। तो सप्तमः गर्भः, तो ये सातवां गर्भ है, तो सातवां मतलब इसके पहले जो छह थे वो कौन थे, अलग अलग शास्त्र में इनका इतिहास बताया हुआ है कि मूलतः ये मरीचि के छह पुत्र थे। मरीचि ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए एक ऋषि हैं, पुत्र हैं, जो ऊपरी लोकों में निवास करते हैं। तो उनके छह पुत्र थे स्मर आदि, और जब एक बार उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपने पुत्री से आकर्षित हो गए हैं, तो उन्होंने जोर से हंसना शुरू कर दिया, तो उनको शाप मिल गया। ब्राह्मण शाप तो होता है बहुत सख्त होता है, तो ये शाप मिला कि उनको असुर योनि में जन्म लेना होगा, फिर अगले जन्म में उनको काल नेमी नाम के एक असुर के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो ये छह बच्चे थे, बड़े हो गए, उनके दादा थे हिरण्यकशिपु। तो एक बार ये छह काल नेमी के पुत्र तपस्या करने के लिए गए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या चाहिए आपको वरदान, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी चाहे वो देवलोक का निवासी हो, चाहे वो गंधर्व हो, किन्नर हो, विद्याधर हो, चारण हो इत्यादि, हमारी हत्या नहीं कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि अरे जब मैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति हूं तो मुझे छोड़कर ये ब्रह्मा जी के पास क्यों गए हैं वरदान मांगने के लिए, तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया और गुस्सा आकर श्राप दिया उन छह लड़कों को कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें आगे चल के ऐसे एक मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और तुम्हारा जो पिता है काल में भी वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो ये छह लड़के जो हैं कालनेमि के पुत्र, वो देवकी के छह पुत्रों के रूप में प्रकट हुए मथुरा में, और कालनेमि जो थे वो कंस के रूप में प्रकट हुए। और नारद मुनि ने कंस को अच्छी तरह से याद दिलाया कि ये कंस देखो, तुम पिछले जन्म में कालनेमि नाम के एक असुर थे और तुम्हारी हत्या भी भगवान विष्णु ने की थी। अब वही विष्णु तुम्हारे आठवें पुत्र के रूप में प्रकट होकर तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा, होशियार सावधान रहना। इसलिए कोई चांस नहीं लेना, जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी खत्म कर लो। इसलिए कंस जो है और भी भड़क गया था। तो इस प्रकार से ये छह पुत्र जो मरीचि के थे, फिर बाद में कालनेमि के हुए, फिर देवकी के गर्भ में जन्म लिए, और हिरण्यकश्यप के शाप के अनुसार उनके ही पूर्व जन्म के पिता जो कालनेमि हैं और इस जन्म के मामा कंस, इसने हत्या कर दी उनकी। इसलिए सप्तम गर्भ, तो ये सातवीं बार देवकी माता गर्भवती हुई। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंस जंभयन् यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान जो कि सारे विश्व के आत्मा है, विदित्वा कंसजं भयं, और जो कि समझ सके, विदित्वा जान रहे थे, कंसजं भयं, कंस से, कंस के कारण से, कंस से उत्पन्न होने वाले भय को वो समझ पाए कि सभी लोग भयभीत हो गए हैं कंस से। यदूनां निजनाथानां, वो समझ गए कि जितने भी यदुवंश के सदस्य थे वो सब भयभीत हो गए हैं कंस से, और भगवान कृष्ण कौन है, उनके निजनाथानां, उनके निजनाथ हैं। योग मायां समादिशत, ये समझते हुए उन्होंने योग माया को बुलाया और आदेश दिया। और क्या आदेश दिया योग माया को भगवान श्री कृष्ण ने, गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभीर अलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। हे देवी, हे योगमाया, गच्छ जाओ, कहां जाना, व्रजं भद्रे, हे भद्रे तुम व्रज गोकुल में जाना, वृंदावन में जाना। गोप गोभीर अलंकृतम, जो कि बहुत सुंदर है वो गोकुल या जो व्रज भूमि है, बहुत सुंदर है, अलंकृतम, और वहां के अलंकार क्या है, गोप गोभी, वहां के जो सुंदर गौवे हैं, वृंदावन जो है गौओं से अलंकृत है, और यहां ब्रजवासी रहते हैं जो मेरे भक्त हैं। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ता भार्यास्ते नंद गोकुले, और उस नंद गोकुल में वसुदेव की भार्या एक पत्नी आस्ते वहां पर निवास करती हैं, जिसका नाम है रोहिणी। अन्यश्च, और अन्य वसुदेव की पत्नियां भी वहां पर रहती हैं, कंस संविदना विवरेषु वसन्ति ही, कंस के डर से इधर उधर एकांत स्थान में नंद गोकुल में वसुदेव की अन्य पत्नियां भी निवास करती हैं, लेकिन विशेष करके वहां पर रोहिणी निवास करती हैं। इसलिए वहां पर जाओ गच्छ देवी। और फिर आगे भगवान आदेश दे रहे हैं योग माया को। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवक्या जठरे गर्भम, कि देवकी के जठर में जो गर्भ है वो शेषाख्याम धाम मामिकम, वो मेरा एक धाम या मेरा एक अंश है जिसका नाम है शेष, शेष आख्यम, और मामकम वो मेरा अंश है, वो मेरा ही रूप है हे योग माया। तत् सन्निकृष्य रोहिण्या, तो रोहिणी के देवकी के गर्भ से इस गर्भ को आकर्षित करो। उदरे सन्निवेशय, और स्थानांतरित करो रोहिणी देवी के गर्भ में। तो योग माया को भगवान कृष्ण ने मिशन दे दिया, कार्य दे दिया कि मथुरा में स्थित देवकी के गर्भ में मेरा शेष अवतार है, तो उस गर्भ को आकर्षित करो और स्थानांतरित करके नंद गोकुल में स्थित रोहिणी देवी के गर्भ में प्रकट करा दो। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट आदेश दिया। और क्योंकि मैं अब देवकी के गर्भ में प्रकट होने वाला हूं, इसलिए मैं अपने शेष अवतार को पहले भेज रहा हूं तैयारी करने के लिए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सीधे रोहिणी के गर्भ में प्रकट क्यों नहीं हुए, बलराम जी सीधे रोहिणी के गर्भ में प्रकट क्यों नहीं हुए, ऐसे क्यों हुआ कि पहले देवकी के पुत्र में आए और फिर रोहिणी के गर्भ, देवकी के गर्भ से योग माया को उनको स्थानांतरित करना पड़ा रोहिणी देवी के गर्भ में। तो इसका उत्तर ये है कि बलराम जो है या शेष, वो सारे सृष्टि के, आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के मूल है, आधार है, बुनियाद है, और भगवान श्री कृष्ण के पहले हमेशा शेष या बलराम रहते हैं। तो बलराम श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी के लिए बलराम जी पहले जाते हैं, पहले जाकर सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक कराते हैं और उसके बाद में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो ये कारण है कि बलराम जी पहले देवकी के घर में प्रकट हुए श्री कृष्ण की तैयारी करने के लिए। वैसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि षडगर्भासुर जो मरीचि के पुत्र, कालनेमी के पुत्र, जो देवकी के गर्भ में जन्म लिए और उसी गर्भ में श्री कृष्ण प्रकट होंगे, तो क्या इसका मतलब है कि षडगर्भासुर और श्री कृष्ण एक ही स्तर के हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, हालांकि षडगर्भासुर देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, लेकिन उनमें और श्री कृष्ण में बहुत अंतर है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और प्रकट होते हुए भी उदासीन रहते हैं, कभी भी इस भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होते हैं। ये भौतिक शक्ति हमेशा उनके नियंत्रण में रहती है, इसलिए जब वो देवकी माता के गर्भ में प्रकट हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका और षडगर्भासुर का स्थान एक ही है। षडगर्भासुर जो है वो एक शाप की वजह से, उनके पूरे कर्मों की वजह से वो ऐसे जन्म, उनको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, परंतु श्री कृष्ण, श्री बलराम स्वयं भगवान है, अपनी इच्छा से वहां पर प्रकट होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देवकी माता भक्ति के समान है और श्री कृष्ण भक्ति है, श्री कृष्ण कृष्ण प्रेम के का प्रतीक है। तो जब देवकी माता कंस से डर रही थी तो इसका मतलब है कि जब भक्त किसी भौतिक संघ से डरता है तो ऐसे भौतिक संघ से दूर रह के जो है उसकी भक्ति का विकास होता है, भक्ति की वृद्धि होती है और फिर ऐसी अनुकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है उसके हृदय में जिसमें कि कृष्ण प्रेम का उदय हो सकता है। तो जब देवकी माता कंस से घबरा रही थी तो यह अच्छा था, प्रभुपाद कहते हैं देवकी के शुद्धिकरण के लिए था। और ऐसे घबराहट से जो मरीचि के 6 पुत्र थे जो कि काम क्रोध मोह मद मत्सर्य इत्यादि के प्रतीक हैं, उनका नाश हो गया उस भय से। भय मतलब कंस, तो कंस ने उन 6 पुत्रों का नाश किया। अर्थात जब हम दुस्संग से, बुरे संग से हम घबराते हैं, हम डरते हैं और दूर रहते हैं तो वो डर कंस रूप कंस की तरह है जो कि हमारे हृदय के अंदर स्थित ये जो अनर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य इनका विनाश करेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको ये उपदेश देते हैं कि हमें दुस्संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए, केवल भक्तों के संग में रहना चाहिए, केवल ऐसे भक्तों का संग चुनना चाहिए जो भक्ति में बहुत गंभीर है, जिनका संग करने से हम भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति कर सकेंगे। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर यहां पर टीका दी है। तो बलराम जी देवकी माता के गर्भ में प्रकट होकर श्री कृष्ण के आगमन के लिए तैयारी कर गए और फिर रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। फिर आगे श्री कृष्ण योग माया को उपदेश दे रहे हैं। अथाहम अंशभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि। अथा अहम अंशभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे। हे शुभे, हे भद्रा, अब मैं प्रकट हो जाऊंगा देवकी के गर्भ में। यहां पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि योग माया को शुभे इस शब्द से संबोधित करके भगवान योग माया को आश्वासन देना चाहते थे कि बलराम या अनंत शेष को देवकी माता के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतरित करने की जो अद्भुत शक्ति है मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, चिंतित नहीं होना। स्वाभाविक है कि यशोदा की योग माया सोचने लगती कि ये कार्य मैं कैसे कर सकती हूं, संकर्षण को बलराम को आकर्षित करना ये तो और का आसान नहीं है। तो श्री कृष्ण यहां आश्वासन दे रहे, चिंता नहीं करना, ये इस कार्य के लिए शक्ति मैं तुम्हें दे दूंगा। प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि। और फिर तुम नंद महाराज की पत्नी यशोदा माता की पुत्री बन जाना और तुम इस प्रकार से वहां प्रकट हो जाओ गोकुल में। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वं सर्वकाम वरेश्वरीं धूपोपहार बलभिहि सर्वकाम वर प्रदान। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वं, मनुष्य समाज में लोग तुम्हारी अर्चना करेंगे हे देवी, क्योंकि तुम सर्वकाम वर ईश्वरीं हो। सर्व काम वर ईश्वरी मतलब सारे भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने वाले। तो मनुष्य समाज तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी अर्चना करेगा। कैसे करेगा? धूप उपहार बलि भी, धूप से तरह तरह के उपहार देकर बलि चढ़ाकर, क्योंकि तुम सर्व काम वर प्रदान, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हो तुम। इसलिए सारे मनुष्य समाज के लोग तुम्हारे पास अपने भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए आ जाएंगे। और फिर आगे इसी योग माया के भिन्न भिन्न नाम जो होंगे इस भौतिक जगत में, उनका वर्णन या उनकी भविष्यवाणी श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारणी नारायणी शानी शारदे त्यंबिकेति च। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च, अलग अलग स्थानों में हे योग माया तुम्हें अलग अलग नाम मिलेंगे। कैसे नाम मिलेंगे? जैसे कि दुर्गा, दुर्गा ये ज्यादा वाराणसी में योग माया इस नाम से विख्यात है और इसलिए ये नाम रखा गया है कि उनके उनके पास आना बहुत कठिन है। दुर्गा मतलब दुर्ग शब्द से आता है, जिसको पार करना या जिसके पास जाना बहुत कठिन हो। दूसरा नाम आपका भद्रकाली या भद्र और काली, भद्र इसी इसलिए आपका नाम भद्रा आपका नाम होगा क्योंकि आप सर्व मंगलमयी होंगी, साथ साथ काली आपका रंग नीला होगा, आपका नाम विजया होगा क्योंकि आप बहुत शक्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं, आप भगवान की बहुत दिव्य शक्ति आपके अंदर है। वैष्णवी क्योंकि आप विष्णु की शक्ति हैं। कुमुदा क्योंकि भोग की सारी इच्छाओं को पूर्ति तुम कर सकोगी। चंडिका, चंडिका मतलब तुम तुम्हारे शत्रुओं के प्रति बहुत कठोर रहोगी, जब तुम असुरों का राक्षसों का वध करोगी तो बहुत कठोर रहोगे तुम। कृष्णा मतलब तुम सारी भौतिक सुविधाओं को प्रदान कर पाओगी। इस प्रकार से और भी अन्य नाम भगवान ने दिए, कहे कि तुम्हारे पृथ्वी लोक के ऊपर ये भिन्न भिन्न नाम होंगे, जैसे कि माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका इत्यादि। तो आज भी हम देखते हैं कि भारतवर्ष में दुर्गा देवी या योग माया अलग अलग इन नामों से जानी जाती हैं। लेकिन इस समय हमें यह कहना चाहिए कि योग माया और यहां की दुर्गा देवी में अंतर यह है कि दुर्गा देवी वो योग माया की छाया है। दुर्गा देवी योग माया की भौतिक प्रतिबिंब है। योग माया केवल भगवान के धाम में निवास करती है और भगवान की लीलाओं के व्यवस्थापन करते हैं। जब वही योग माया को भौतिक जगत में प्रकट होना पड़ता है तो वो दुर्गा देवी का रूप धारण करती है और उनका काम होता है कि इस दुर्ग के भीतर जितने भी बद्ध जीव हैं उनको बद्ध अवस्था में रखना। जैसे कि एक जेल के वार्डन को उसका ये कर्तव्य होता है कि जेल में जितने भी कैदी हैं उनको बंद करके रखें। तो योग माया या लक्ष्मी देवी वो भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, आध्यात्मिक ऐश्वर्य। लेकिन जो भक्त नहीं है अगर उनको धन प्राप्त होता है तो वो धन लक्ष्मी से नहीं प्राप्त होता बल्कि दुर्गा देवी से प्राप्त होता है। तो ये स्वयं श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं कि अगर कोई अभक्त धन प्राप्त करता है तो हमें समझना चाहिए कि लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं है ये बल्कि दुर्गा देवी की कृपा है उसके ऊपर। तो खैर मूल तत्व तो वही है योग माया। इसलिए भगवान जब कहते हैं कि नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, तो कहते योग माया समावृत है। तो तो यहां योग माया का मतलब है महामाया, दुर्गा। परंतु मूल शक्ति वही है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण योग माया शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। हे योग माया, जो रोहिणी के पुत्र होंगे उनके तीन नाम होंगे। पहला नाम संकर्षण, क्यों संकर्षण नाम आएगा? गर्भ संकर्षणात् तम वही, क्योंकि वो देवकी माता के गर्भ से आकर्षित होकर रोहिणी देव के गर्भ में आए। संकर्षण मतलब आकर्षित करना, इसलिए उनका नाम होगा संकर्षण। दूसरा नाम होगा राम, क्योंकि लोक रमणाद, क्योंकि विशेष करके वृंदावन ब्रज गोकुल के लोगों को, ब्रजवासियों का मन वो बहुत आनंदित करेंगे, आकर्षित करेंगे, उनको बहुत दिव्य आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए उनका नाम होगा राम। तो राम शब्द जो है वो न केवल रघुपति राम, अयोध्या के राम को संबोधित करता है, परंतु श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भी संबोधित करता है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि राम शब्द क्या बलराम है, रघुपति राम है, परशुराम है, कौन है? जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये राम शब्द तीनों ही रामों को संबोधित करता है, परंतु बलराम भी राम है। प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी ये हरे कृष्ण और जो हरे राम, इस महामंत्र में जो राम शब्द आता है, कई लोग कहते हैं राम शब्द को बलराम क्यों कहते हैं, ये रघुपति राम क्यों नहीं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि अवश्य रघुपति राम को भी ये राम शब्द संबोधित करता है, लेकिन राम बलराम का भी एक नाम है। और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हो रही है, यहां प्रमाण है। राम इति लोक रमणाद, क्योंकि सारे लोगों के मन में, वृंदावन के निवासियों के मन में वो दिव्य आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए उनका नाम होगा राम। और तीसरा नाम उनका होगा बलभद्र, क्यों होगा? बल उच्छ्रयात्, क्योंकि उसकी उसका जो शारीरिक बल है वो बहुत ही तीव्र होगा, बहुत ज्यादा अधिक होगा, इसलिए नाम होगा बलभद्र या बलदेव या बलराम। इस प्रकार से भगवान योग माया से कहा कि बलराम के तीन नाम ऐसे क्यों होंगे। फिर योग माया तुरंत तैयार हो गई, ओम शब्द कह के भगवान का प्रदक्षिणा किया, और प्रदक्षिणा करके वो वहां से अपने कार्य करने के लिए वृंदावन की ओर निकल पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? गर्भे प्रणीत देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचक्रुषुः। गर्भे प्रणीते देवक्या, जब देव की माता के गर्भ में से रोहिणी देव के गर्भ में बलराम आए योग निद्रया, योग निद्रा या योग माया के शक्ति के द्वारा, तो क्या हो गया? विश्रंसित गर्भः, गर्भ का नाश हो गया, ऐसे प्रतीत हुआ, ऐसे लगा कि देवकी का गर्भपात हुआ है। वैसा हुआ तो नहीं था, लेकिन लोगों को ऐसे लगा। इति पौरा विचक्रुष हो, इसलिए जितने भी वहां घर में पौराह वहां पे निवासी थे, कंस भी उसमें शामिल थे, सब लोग शोक करने लगे। कंस भी शोक कर रहे, कंस को भी लगा कि शायद कोई ऐसी आफत आई होगी, कोई दवाई की वजह से कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से गर्भपात हुआ। ऐसे हरिवंश पुराण में बताया जाता है कि देव की माता का ये तथा कथित गर्भपात हुआ और उस समय रोहिणी देवी 7 महीने गर्भवती थी और रोहिणी माता को सपने में ऐसे लगा कि उनका भी गर्भपात हो गया है, तो डर के मारे वो जाग गई और उसी समय सपने में ही आकर योग माया ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करना है रोहिणी देवी, अब तुम्हारे गर्भ की जगह मैं देवकी के गर्भ से एक बालक बच्चा ला रही हूं तुम्हारे गर्भ के अंदर। और इस प्रकार से रोहिणी देवी के गर्भ में फिर बलराम आए। केवल ऐसे गर्भ संहिता में बताया जाता है कि केवल 5 दिन वहां पर वो रहे रोहिणी के गर्भ में बलराम जी, और उसके बाद उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से यहां कृष्ण भगवान ने वर्णन किया कि आगे चल के बलराम जी का जन्म कैसे होना है, और फिर योग माया जब गई वहां पर तो उन्होंने बलराम को भगवान के आदेश के अनुसार रोहिणी देवी के गर्भ में स्थानांतरित किया, बलराम जी का जन्म हुआ। और गर्भ संहिता में बताया गया है कि नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उस बच्चे के जन्म के बाद 10 लाख गवों को दान में दिया, बहुत खुशियां मनाई वहां पर, और सारे ब्रह्मांड से कई ऐसे साधु ऋषि मुनि आए, देवल, असित, वशिष्ठ, भरद्वाज इत्यादि। इन ऋषि मुनियों में से प्रमुख थे नारद मुनि और व्यासदेव। व्यासदेव वहां पर आए और नंद महाराज ने व्यासदेव को पूछा उन सारे ऋषि मुनियों का स्वागत करने के पश्चात कि ये जो बहुत ही सुंदर बालक है ये कौन है, इसका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि हमें कोई संशय हो रहा है कि ये बच्चा कौन है, कहां से आया है। तो व्यासदेव ने उत्तर दिया कि हे भाग्यशाली नंद महाराज, ये जान लो कि ये बच्चा वास्तव में देवकी का है, लेकिन देवकी के गर्भ से भगवान के आदेश के अनुसार स्थानांतरित होकर यहां अब रोहिणी देवी के गर्भ से जन्म लिया है। केवल 5 दिन में इस बच्चे का जन्म हुआ है और ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसलिए आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपके नंद गोकुल में इस बच्चे का जन्म हुआ है। और वेदव्यास ने उस समय बलराम की स्तुति की, सुंदर प्रार्थना की और उनके आने वाले लीलाओं का वर्णन किया, जैसे कि प्रलंबासुर का वध इत्यादि। और फिर सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर 100 बार बलराम जी की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करने के बाद प्रार्थना करके वहां से निकल पड़े। उधर थोड़े दिनों बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के जन्म होने के बाद भी बहुत खुशियां मनाई गई, वहां पर नंदोत्सव हुआ और भगवान श्री कृष्ण धीरे 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 से बड़े होते गए। कंस असुरों को भेजते रहे, पूतना का वध हुआ, त्रिणावर्त का वध हुआ और उसके बाद एक दिन गर्ग मुनि जो कि यदुकुल के कुल गुरु थे वो आए नंद महाराज के घर वृंदावन में। उनका स्वागत बड़ी अच्छी तरह से नंद महाराज ने किया और स्वागत करके पूरे सम्मान से उनको बिठाया, मीठे शब्द से उनका स्वागत करने लगे और फिर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार आप कृपया कीजिए। तो गर्ग मुनि ने कहा कि नहीं, इसमें धोखा है, खतरा है। खतरा ये है कि सभी लोग जानते हैं कि मैं यदुवंश का कुलगुरु हूं, तो अगर बड़े धूमधाम से नामकरण संस्कार मैं करूं तो कंस तक ये खबर पहुंच जाएगी अवश्य, और कंस जान जाएगा कि ये जो 2 लड़के हैं वो शायद देवकी के लड़के होंगे, इसलिए कंस यहां आएगा, इसलिए इन 2 बच्चों के लिए खतरा है, इसलिए खुलेआम ऐसे करना ये ठीक नहीं होगा। तो फिर नंद महाराज ने निवेदन किया, तो ठीक है फिर मुनिवर ऐसा कीजिए, मेरे गौशाला के अंदर एकांत स्थान में बड़े चुपचाप आपकी नामकरण संस्कार कर दीजिए ताकि किसी को पता नहीं चलेगा। नामकरण संस्कार तो होना ही है, संस्कार के बिना तो व्यक्ति शूद्र होता है। संस्काराथी भवे द्विज, एक ब्राह्मण भी द्विज होता है अगर जन्म से तो शूद्र होता है, जन्म ना जाए तो शूद्र है, संस्कारों की तो आवश्यकता है। तो फिर गर्ग मुनि तैयार हुए, कहा ठीक है। फिर आगे गर्ग मुनि क्या कहने लगे, श्री गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिख्यात बलम विदुः यदूनाम अपृथक भावात् संकर्षणम उषन्त्यपि। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है, रमयन सुहृदो गुणैः, वो बहुत प्रसन्न करेगा किनको, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, मित्र हैं इत्यादि, जितने भी सुहृद हैं, उनके मित्र हैं। इसलिए आख्यास्यते राम इति, इसलिए इसका नाम होगा राम। तो गर्ग मुनि ने नामकरण संस्कार में पहला नाम बलराम का रखा राम। तो दूसरी बार यहां पर यह प्रमाण है कि बलराम जी को भी राम कहते हैं। बलाधिख्यात बलम विदुहो, बल अधिक्यात, बहुत अधिक बल होने की वजह से इसका नाम बलराम या बलभद्र भी होगा। यदुनाम अपृथक भावात संकर्षणम उषन्त्यपि, तुम्हारा वंश है नंद महाराज और यदुओं का वंश जो है वो अलग है, लेकिन संकर्षणम उषन्त्यपि, अब इस बच्चे की वजह से तुम्हारे दो वंश जुड़ गए हैं, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षणम, क्योंकि इन्होंने दोनों वंशों को जोड़ दिया। अब कैसे बलराम जी ने दोनों वंशों को जोड़ दिया, इसके बारे में बताया जाता है कि वास्तव में नंद महाराज और वसुदेव दोनों के पिता एक ही थे, शूरसेन, लेकिन शूरसेन की कई पत्नियां थीं। शूरसेन की एक क्षत्रिय रानी से, पत्नी से वसुदेव का जन्म हुआ, तो वसुदेव पूरी तरह से क्षत्रिय थे और वसुदेव ने एक क्षत्रिय महिला से, रानी से विवाह किया देवकी, तो वसुदेव और देवकी दोनों पूरे क्षत्रिय थे। नंद महाराज भी शूरसेन के पुत्र थे, परंतु शूरसेन ने नंद महाराज का जन्म कराया एक वैश्य पत्नी से, इसलिए नंद महाराज की मां जो है वो वैश्य थी, तो नंद महाराज ने वैश्य का कार्य स्वीकार किया, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो उन्होंने भी एक वैश्य महिला से विवाह किया, यशोदा माता। तो इस प्रकार से ये एक वंश क्षत्रियों का था, एक वैश्यों का, पिता एक थे, लेकिन अब बलराम जी थे जो देवकी के गर्भ से अब रोहिणी देवी के गर्भ में आए, तो उन्होंने दोनों वंशों को जोड़ा दिया, मिला दिया, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। तो इस प्रकार से गर्ग मुनि ने नामकरण किया और बलराम जी को उन्होंने ये तीन नाम दिए। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जब अपने गौओं को लेकर ब्रजपुर से बाहर जाते हैं वन की ओर, बांसुरी बजाते बजाते जाते हैं, और जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सारे गौएं आकर्षित होकर उनके पीछे 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 चलते हैं, और जब गौएं इधर उधर चरने के लिए जाती हैं और जब वापस लौटने का समय हो जाता है, फिर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी पुनः बजाते हैं। आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण नंदग्राम में रहा करते थे तो तेर कदम नाम के जगह में भगवान श्री कृष्ण कभी कभी बांसुरी बजाया करते थे, कभी कभी गौओं को अपने उनके नामों से बुलाया करते थे। हर एक गौ गाय का नाम जो है श्री कृष्ण जानते थे, और बांसुरी से भी गौएं पहचान जाती थीं कि श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तो जल्दी से दौड़ के आते थे और फिर श्री कृष्ण बलराम और जो ग्वाल बाल थे सब उन गौओं को वापस ले जाया करते थे। तो श्री कृष्ण अपने बांसुरी के साथ में रहते हैं और श्री कृष्ण गौ रक्षा के प्रतीक हैं। लेकिन बलराम जी के साथ क्या होता है, कभी कभी बांसुरी भी होता है। हम देखते हैं यहां पर कृष्ण बलराम के जो विग्रह हैं, बलराम जी कभी कभी बांसुरी धारण करते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका अस्त्र क्या है, कभी कभी गदा भी धारण करते हैं द्वारका भाव में आकर, परंतु वृंदावन में क्या धारण करते हैं, हल। इसलिए उनका नाम है हलधर। तो वो बलराम जो है वो कृषि रक्षा के प्रतीक है, जैसे कृष्ण गो रक्षा के प्रतीक है, बलराम कृषि रक्षा के प्रतीक है। इसलिए हल अपने कंधों के ऊपर कभी कभी धारण करते हैं। तो इसलिए मनुष्य समाज को चाहिए कि वो तीनों के ऊपर निर्भर रहे, कृष्ण बलराम, दूसरे गाय और तीसरा हल। हल मतलब भूमि। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर ये तीन चीजें हमारे पास हैं, भगवान, भूमि और गाय, तो मनुष्य समाज में कोई कमी नहीं होगी, मनुष्य समाज सुखी होगा, सारी समृद्धि संपत्ति उपलब्ध हो जाएगी मनुष्य समाज के लिए, किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौ निताई की सेवा करते हुए, कृष्ण कथा सुनते हुए गौओं की रक्षा करें और भूमि से उत्पन्न होने वाले अनाज को खाएं, भूमि की रक्षा करें, गौओं की रक्षा करें, तो बस यही फॉर्मूला है, यही सूत्र है हमारे सुख और शांति के लिए। बलराम जी ने इसी हल से भी कई लीलाएं की थी, यमुनाकर्षण लीला, जब वो वापस यहां पर वृंदावन आए, द्वारका में रहते हुए भी तो उन्होंने रासलीला करना चाहा, और रासलीला करते समय करने के बाद जब वारुणी पेय उन्होंने पी लिया था तो उनको इच्छा हुई कि अब जल क्रीड़ा करना है गोपियों के साथ। बलराम जी की गोपियां अलग हैं श्री कृष्ण की गोपियों से, दोनों भिन्न हैं, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं श्री कृष्ण के, पिता तुल्य हैं। इसलिए श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं वो जब बलराम जी को देखती हैं तो सर नीचे कर लेती हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बड़े भाई या पिता तुल्य हैं। तो बलराम जी जब रासलीला करते हैं तो कृष्ण के गोपियों के साथ तो हरगिज नहीं कर सकते। तो बलराम जी की जो गोपियां हैं वो भिन्न है, अलग है। तो इन गोपियों के साथ में भी बलराम जी ने यहां पर रासलीला की, पूरे दो महीने यहां चैत्र महीने के समय रहे यहां बलराम जी, और रासलीला करने के बाद जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई तो देखा कि यमुना जी काफी दूर है। उन्होंने यमुना जी से कहा कि पास में आओ, हमें जल क्रीड़ा करना है। यमुना देवी ने उतनी गंभीरता से बलराम जी की बात को नहीं ली, तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, अपना हल लिया और खींच लिया और यमुना देवी को आकर्षित किया। यहां पर कई छोटे छोटे नदियां बना दी, यमुना देवी जो है बहुत भयभीत हो गई और तुरंत बलराम जी के सामने आई हाथ जोड़कर कि हमसे बहुत गलती हो गई, और उसके बाद बलराम जी ने क्षमा कर दिया और अपने गोपियों के साथ में जल क्रीड़ा की। अपने हल का प्रयोग बलराम जी ने हस्तिनापुर में भी किया, ये लीला तो बहुत लंबी है, समय नहीं हमारे पास। लेकिन जब सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को अपहरण कर लिया और विवाह कर लिया, तब उनको भीष्म देव ने आदेश देकर अन्य जो कौरव सैनिक है वो सब गए और सांब को गिरफ्तार करके वापस लाए, तो यदुवंश के जो सदस्य वो सब बड़े क्रोधित हो गए द्वारका में। बलराम ने उनको शांत किया, कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाके सब ठीक ठाक कर लेता हूं। बलराम जी आए तो कुरु वंश के जो लोग थे बड़े घमंड में थे, बलराम का अपमान हुआ, बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, फिर से अपना हल लिया और उन्होंने हस्तिनापुर को यमुना के अंदर खींचने के लिए अपने हल का प्रयोग किया। ऐसा भूकंप जिसके सामने हमारा सुनामी जो है बहुत ही कुछ भी नहीं है। तो जब सारे कुरुवंश के लोगों ने देखा कि हमारा शहर का शहर ही नीचे जा रहा है, तो सब दौड़ते हुए बलराम जी के शरण में फिर से आए और बलराम जी ने फिर से उनको क्षमा कर दी। बड़े धूमधाम से विवाह हो गया और सब ठीक ठाक हुआ। इस प्रकार से यहाँ कृष्ण बलराम दोनों ही वृंदावन में निवास करते हैं सदैव। जैसे श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, कि एक पद भी वृंदावन को छोड़कर नहीं लेते, उसी प्रकार से बलराम भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। तो फिर हस्तिनापुर को यमुना में खींचने वाले बलराम कौन थे? वो संकर्षण थे। मूल कृष्ण और मूल बलराम वृंदावन में रहते हैं। जब कृष्ण बलराम मथुरा चले गए तो अक्रूर घाट में यमुना के तट पर फिर भगवान श्री कृष्ण के अंदर से उनका वासुदेव स्वरूप यमुना पार करके मथुरा में चला गया और बलराम से उनके संकर्षण स्वरूप जो है वो वासुदेव के साथ चले गए। तो मथुरा और द्वारका हस्तिनापुर में लीला करने वाले कृष्ण बलराम वो वासुदेव और संकर्षण रूप है भगवान के, लेकिन मूल जो कृष्ण बलराम है वो दोनों ही वृंदावन में ही रहते हैं और यहां से एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं, आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं, इसलिए आज उनके आविर्भाव दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे हृदय के भीतर जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो दावनल जल रहा है, उसका शमन कर लें। बलराम जी का सफेद रंग होने का एक कारण है, नीताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। बलराम जी भी नित्यानंद प्रभु है। नीताय पद कमल, नित्यानंद प्रभु या बलराम के चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि कोटि चंद्रमाओं के शीतल किरणों के समान उनके चरण कमल हैं। सूरज के गर्मी से जब व्यक्ति थक जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा की किरणें, शीतल किरणें उसको अनुभव करने को मिलती हैं, तो बहुत शांत हो जाता है व्यक्ति। उसी प्रकार से इस दावनल में रहते हुए व्यक्ति जब बहुत ही पीड़ाग्रस्त हो जाता है, हैरान हो जाता है, तो श्री बलराम के चरण कमल ऐसे कोटि कोटि चंद्रमाओं की तरह है और जिनके किरणों से हमारे हृदय के भीतर जो दावनल है उसका शमन हो सकता है। तो आज हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय के अंदर जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं उनका वो दमन करें, और क्योंकि वो गुरु हैं तो हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करें। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। श्री बलराम कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए आज आधा घंटा ज्यादा लिया, क्योंकि आज उपवास है तो प्रसाद का समय थोड़ा क्लास में लग गया। हरे कृष्ण। तो आज 10 बजे से अभिषेक का कार्यक्रम होगा, कृपया सभी अभिषेक का आनंद लीजिएगा। हरे कृष्ण।